السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے کہ ہمیں آخری دین حق سے جوڑ دیا ہے اور ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں ایک کام دیا ہے. ہمیں یہ کام دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دین کے کسی حصے کو اختیار کر کے اور کسی دوسرے حصے کو چھوڑ کر زندگی مت گزارو، بلکہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرما دیا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سب مل کر تھامے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور جدا نہ ہو جاؤ. اس رسی کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، بلکہ تم بہت مضبوطی کے ساتھ اس محاذ پر ڈٹے رہو، اس مشن پر جمے رہو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں لگایا تھا اور جس کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اسے نہیں پہنچایا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. یہ وہ کام ہے جو سب سے زیادہ پائیدار ہے، یہ وہ کام ہے جو ایک مسلمان کو سب سے زیادہ حوصلہ دینے والا ہے، اس کو اندر سے مضبوط کرنے والا ہے، اسے طاقت دینے والا ہے، اس کے اندر ایمان کو جگانے والا ہے، اس کے اندر ایمان پر اعتماد پیدا کرنے والا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول بڑھانے والا ہے. اس لیے کہ انسان جب وقت وقت سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں شک شبے کی کیفیت نہیں ہوتی. اس کے سامنے دو راستے نہیں ہوتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر بھی چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی چلے جائیں، حالات کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں گے. وہ یہ نہیں کرتا، اس کا اسٹینڈ بہت کلیئر ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنا فریضہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، وہ مسلسل اسے ادا کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے بڑا فریضہ جو امت مسلمہ کا ہے، اور امت مسلمہ امت واحدہ ہے پوری دنیا میں، جب بھی ہم امت کا لفظ استعمال کریں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ سب کے سب ہمارے بھائی، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی بستے ہوں، دنیا کی کوئی زبان بھی بولتے ہوں، ان سب کے بارے میں بیک وقت ہمارا سوچنا، ہماری فکر کا ایک ख़ास नुक्ते पे मरकूज़ हो जाना, और वो नुक्ता है उम्मत का एक होना, हमेशा इसके लिए तड़पना, उम्मत की फलाह, उम्मत की कामयाबी, उम्मत का अपने रास्ते से हट जाने पर अफसोस, और उसके लिए प्लानिंग और मंसूबा के उम्मत को बहसियत उम्मत क्या करना चाहिए, हर वक्त इसकी फिक्र, हर वक्त इस पर नज़र। सिर्फ जो टुकड़ियों में बांटे गए हम मुख्तलिफ मुल्कों में, और जो हदूद खींची गई हमारे दरमियान, जुग्राफियाई हदूद जो होती है, यहाँ से ये मुल्क शुरू होता है, वहाँ से ये मुल्क शुरू होता है, ये दुनिया के इंतज़ामात हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को और एक बड़ी बिरादरी में इकट्ठा फरमाया है, और उसके साथ जब कलमा वाहिदा की बुनियाद पर तमाम अहले ईमान को एक साथ मुत्तहिद फरमाया है। अगर कहीं भी अहले ईमान के साथ कोई बात होती है तो उसका दर्द हमें अपने दिल में महसूस करना चाहिए, और उसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि हमारा क्या फरीज़ा है, हम क्या कर सकते हैं। इस्लाम को मिटाने की कहीं भी कोई कोशिश हो तो कभी भी ये सोचना कि ये कोशिश तो बहुत दिनों से हो रही है और ऐसा तो होता आया है ज़माने से, और अब हम नहीं बचेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो ख़त्म हुआ, बोरिया बिस्तर अब लपेट लिया जाए और अब कहीं और चला जाए, अब गुज़र नहीं है। इस किस्म के ख्यालात इसीलिए पैदा होते हैं कि इंसान सेफ साइड चाहता है, इंसान इस दुनिया में आराम चाहता है, ख़ास तौर से आज का मुसलमान ये चाहता है कि हमें आराम की ज़िंदगी मुयस्सर रहे, सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर रहे, हमें दर्द ना पहुँचे, कहीं चोट ना लगे, हर वक्त हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी हमें नसीब हो, हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए बहुत मामूली मामूली तकलीफ़ें हमें नुकसान पहुंचाती, और इसलिए भी कि हमने उम्मीदें बहुत बांध ली हैं उन लोगों से जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। तरह तरह की उम्मीदें हैं, कोई मसीहा खड़ा होगा जो हमारा हाथ पकड़ के नजात के साहिल तक ले जाएगा, इस समंदर और मंझधार से हमें निकाल देगा, कोई आएगा जो हमारा सपोर्ट करेगा, कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, कोई हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा, ये तो फिर भी बहुत गनीमत है, लेकिन हमारी कोई आवाज़ ही नहीं है तो हमारी आवाज़ में कौन आवाज़ मिलाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ कहे, हम तो दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं करते तो दुनिया को तो छोड़िए। लेकिन जब भी हमारे साथ कुछ होता है, और हमारे साथ जब हम कहते हैं तो ख़ास तौर से जब हमारे घर की चार दीवारी में आग लगती है, हमारे मेरे हमारे भी नहीं, जब मेरे घर के अंदर आग लगती है तब हम वावेला मचाते हैं कि दुनिया देखती नहीं है, क्या दुनिया मर गई है, क्या हमारे पड़ोसी मौजूद नहीं है, क्या दुनिया के लोगों को ये मालूम नहीं है कि इंसान का क्या हक है, उस वक्त आवाज़ लगाते हैं। वरना देखने वालों ने देखा है कि अगर शाम के मुसलमानों के साथ कुछ हो, फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ कुछ हो, बर्मा के मुसलमानों के साथ कुछ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और ऐसे मौके से जब कभी जुमे में कोई इस मौजू पर तकरीर की गई या किसी मजलिस में बात की गई तो ऐसे मुसलमान भी मिले जिन्होंने कहा कि भाई वहाँ का मसला आप यहाँ क्यों छेड़ रहे हैं, और आखिर हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, हम तो हैं ना सुकून से। तो हमने उनसे यही कहा था कि एक दिन आएगा कि आप देखेंगे कि जब हालात आपके साथ आएंगे तो आप कहेंगे कि दुनिया में मुसलमान मर गए हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हमारे हक में, और मुसलमान ही क्यों, दुनिया में जो हुकूक़ इंसानी के जो आलमबरदार हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलते। हम दुनिया भर से चाहेंगे कि लोग हमारे लिए बोलें। और अब तो हमारा हाल ये हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गए, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गए, और एक एक आदमी अपना अलग अलग हिसाब रख रहा है कि सिर्फ हम अपना देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, और आसपास भी अगर आग आ जाएगी तो ये सोचेंगे कि अभी हो सकता है बीच में कोई बुझा देगा, हो सकता है कि कोई पानी डाल देगा, या उसका घर जलेगा, हम तक आएगा तो देख, अच्छा मरना है तो मर जाएंगे, चलिए फिर देखेंगे, लेकिन अभी तो हम महफूज हैं। इस चीज़ ने हमें इतनी दूर पहुंचा दिया है कि हम में से कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि इतनी तेज़ी से हम ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाएंगे, एक ऐसे मुल्क में जिस मुल्क के दस्तूर के लिए और जिस मुल्क के आइन के लिए और जिस मुल्क के जिसकी सेकुलर छाप के लिए हमने अपने दीन की बहुत सी बुनियादी चीज़ों को छोड़ा है, तरजीह दी है उसको, हम खुलकर अपने कुरान मजीद की बात नहीं करते हैं कि कुरान हमारा दस्तूर है, हम खुलकर उम्मत वाहिदा की बात नहीं करते हैं, हम खुलकर खिलाफत की और इस्लामी हुकूमत की बात नहीं करते हैं, खुलकर वो बातें नहीं करते हैं जो हमारा ईकान है, हमारे दिल के अंदर पैवस्त है, जो अल्लाह का निज़ाम दुनिया में गालिब होना चाहिए, वो सब हमने तज दिया है इस मुल्क में सिर्फ सेकुलर शबीह को बाकी रखने के लिए। और हमारी ज़बानों पर यह होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सेकुलर मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ादी में कुर्बानी दी, ये सब हमने किया है। लेकिन उसके बावजूद आज हम एक ऐसी मंजिल पे खड़े हैं, एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं, एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें किधर जाना है। और इस वक्त करने के जो काम हैं वो तो हम सोच नहीं रहे हैं, ना उसके बारे में मशवरा कर रहे हैं, और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं किया क्या जा रहा है। करने वाले जो लोग सोशल मीडिया के मुजाहिदीन हैं वो ये कर रहे हैं कि वो ये उसको लान तान कर रहे हैं, ये उसको लान तान कर रहे हैं, वो उसको बुरा भला कहते हैं, वो उसको बुरा भला कहते हैं, उलमा कहते हैं कि दानिश्वरों ने कुछ नहीं किया, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि उलमा ने कुछ नहीं किया, कानूनदान कहते हैं कि ताजिरों ने कुछ नहीं किया, ताजिर कानूनदानों को कहते हैं, सब एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब मुजरिम है, सब लोगों ने मिलकर गुनाह किया और सब ने मिलकर गफलत बरती है, सब ने मिलकर अपना फ़र्ज मनसबी छोड़ा है, अपने मिशन को छोड़ा है। कुरान मजीद में फरमाया गया, वकाल الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين। हमेशा काफिरों ने अपने रसूलों से यही कहा कि हम तुम्हें जरूर बिजरूर अपनी सरजमीन से निकाल देंगे, या तुम्हारे वतन से निकाल देंगे, या तुम लौट कर हमारी तरफ आ। कुरान ने फौरन कहा कि उनके रब ने उनको वही की कि हम जालिमों को ज़रूर भी ज़रूर हलाक कर देंगे। मुसलमान ये आयत पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन जो वादा किया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जो लोग भी इस तरह किसी हक़ के मानने वाले को ये कहेंगे तो अल्लाह की तरफ से ये जवाब आएगा कि हम जुल्म करने वालों को हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, और उनके बाद तुम्हें ज़मीन में हम जगह देंगे। ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वाईद, ये वादा उन लोगों के लिए है जो मेरे सामने खड़े होने से डरते हैं, ये वादा उन लोगों के लिए है जो मेरी वईदों से डरते हैं, जो मेरे वादों का ख्याल रखते हैं। कुरान मजीद की इस आयत में वादा फरमाया गया, लेकिन वादे के साथ एक शर्त रख दी गई है, और वो शर्त यही है कि जिस तरह रसूलों ने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने में कोई गफलत नहीं बरती, वो उनकी जिम्मेदारी थी। आखिरी रसूल को यही पैगाम दिया गया तो उनके साथ उनकी उम्मत को ये पैगाम दे दिया गया, ये जिम्मेदारी दे दी गई, ये काम सुपुर्द कर दिया गया कि तुम जहाँ कहीं भी होना, जिस हाल में भी होना, तुम अक्सरियत में होना, अकलियत में होना, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो ये काम है हक़ को पहुँचाने का, ये कभी मत छोड़ना। ये हक़ को पहुँचाने का काम जब छोड़ा जाता है तो अल्लाह की ये सुन्नत है कि फिर अल्लाह की तरफ से मदद का इंतज़ार एक वहम होता है। हम ये सोचते हैं कि बैठे बिठाए, और बहुत सी मरतबा लोग ये सोचते हैं कि बाज़ वजीफ़े हमें नजात दे देंगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इतनी बार पढ़ लिया जाए, इतनी बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया जाए, इतनी बार ये दुआ मांग ली जाए। ये दुआएँ, ये तो हमारा फ़र्ज मनसबी है, हम अल्लाह से ना मांगें तो किससे मांगें, अल्लाह के सामने ज़िक्र ना करें तो कहाँ ज़िक्र करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, काम दिया गया है कि अल्लाह से मांगो और असबाब तलाश करो, दिल अल्लाह पर भरोसा रखे, दिल अल्लाह से जुड़ा रहे, और तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हों, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल, तुम्हारी अक्ल जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारी थिंकिंग, अगर फ़िक्र नहीं है, अगर इंसान के पास फिक्र ना हो, सोच ना हो, उसका कोई स्टैंड ना हो, कोई उसकी समझ ना हो, तो फिर उसके नतीजे में कोई खाका नहीं बनता, कोई प्लानिंग नहीं बनती। जब कोई प्लानिंग नहीं होती तो कोई काम नहीं होता, फिर एक्शन नहीं हो सकता है। और बग़ैर काम के इंसान चाहे कि हाथ पर हाथ धर कर या तो अपने गुजरे हुए लोगों का गुन गाए और उनकी तारीख बयान करे कि 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, कितनी बार हमने संवारा है और इस उजड़े हुए दयार को बसाया है और दिल्ली उजड़ी बार बार बसाया, दक्कन को बसाया और तमाम हिंदुस्तान के खित्तों को बसाया, सब आपने किया। आज आप क्या कर रहे हैं, कल आपके पास करने के लिए क्या मंसूबा है। अब जो हालात इस वक्त मुल्क के पैदा हो गए हैं उसमें मुसलमानों के सामने कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, और किसी ऐसे रास्ते से नहीं आ रही हैं जो बहुत मुनज़्ज़म हो, बल्कि चूंकि पूरी दुनिया मोबाइल पे है तो मोबाइल पे ही चीज़ें आ रही हैं और सोर्स उसका नहीं मालूम होता है कि कहाँ से आ रही हैं। किसी का मशवरा कुछ है, किसी का मशवरा कुछ है, एक बिखरा हुआ मुसलमान और बिखरी हुई राय। कोई कहता है कि इस मुल्क को छोड़कर हम चले जाएं कहीं, और जिसके पास पैसा है वो सबसे पहले यही बात सोच रहा है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और कहीं सिटीजनशिप मिले ना मिले, कुछ गुजारा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो एक सोच ये कि हम अपना वतन छोड़कर चले जाएं, क्या ये अल्लाह के दीन के नाम पर हिजरत कहलाएगी? क्या ये अल्लाह के दीन के नाम पर आप हिजरत करके किसी दारुल इस्लाम में जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे कि तो क्या पीठ फेर कर मैदान छोड़कर ये मुल्क अपना वतन और अपने घर बार और अपने रिश्तेदार ख़ानदान और मुस्लिम उम्मा को छोड़कर क्या आप अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाएंगे? ये एक मुसलमान की शान के खिलाफ है इस तरह की सोच रखना कि जब हालात आएंगे तो हम मैदान छोड़कर अपनी जान बचा लेंगे। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, और ये इंतहाई गलत ख्याल है। अगर हर शख्स ऐसा सोचने लगे तो इसका साफ मतलब है कि उसके दिलों में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसके दिल के अंदर अपने इस्लाम और अपने दीन के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं है। अगर यहाँ से जाकर वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुछ कर सकता है तो ये बहुत मुबारक, लेकिन अगर अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, अपना माल बचाने के लिए सिर्फ कर रहा है, सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहा है, तो गोया उस दीन की रूह के ख़िलाफ़ कर रहा है जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे और मक्का मुकर्रमा में और मदीना मनवरा में उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी और सहाबा को उस कुर्बानी पर छोड़ कर गए थे, और आज हम उन्हीं का नाम लेकर जिंदा हैं। एक दूसरी राय ये दी जाती है कि हम कागजात बनाएं, जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, चूँकि ये जो आज एक्ट बन गया, कल बिल था, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल था वो एक्ट बन गया। अब इसके बाद इससे कोशिश की जाएगी कि एनआरसी लाया जाए, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, एनआरसी वगैरह कुछ आने वाला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लेंगे। ये भी एक अजीब व गरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर इतना ज़्यादा भरोसा मुसलमानों का बढ़ता जा रहा है जितना शायद दूसरी कौमों का नहीं है, इसलिए कि मुसलमान कमज़ोर है। मुसलमान हमेशा ये सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हर चीज़ में इंसाफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम होता तो, अगर वो अपना काम कर रहा होता तो, रोज़ दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, कोई खुफिया साजिश नहीं है कि छुपी हुई है और माहिरीन उस पर गौर कर रहे हैं, ये दो दो चार की तरह वाजे है बिल्कुल। जो लोग कानूनी चाराजोई करेंगे वो जाएंगे उस पर गौर फिक्र करेंगे, उनको करना चाहिए और मिलकर करना चाहिए, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब मिलकर करें। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये सोचना कि इस मुल्क में ये नहीं होगा, ये कानून नहीं आ सकता, अब देखते हुए आए हम इतनी तेज़ी से एक फ्लो के साथ, कहा गया कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, बड़े बड़े माहिरीन के लेक्चर्स सुने, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, वो हो गया, ये भी नहीं हो सकता, वो भी हो गया, उस एक के बाद एक चीज़ होती जा रही है और मुसलमानों का एतमाद एक दूसरे रुख पे चला जा रहा है। यह इंतज़ार है कि हो सकता है ना हो, अब इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसको रोक दिया जाए, खुदा करे ऐसा हो जाए। लेकिन अगर नहीं करते हैं, अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, अगर प्रोटेस्ट का कोई तरीक़ा इख्तियार नहीं करते हैं, मानते चले जाते हैं एक एक बात और ये सोचते चले जाते हैं, इंतज़ार करते चले जाते हैं, चलो ये भी करके देख लेते हैं, तो वही होगा जो मुसलमानों के साथ स्पेन में हुआ था, जज़ीरा आइबेरिया में, जो अंदलुस का छोटा सा जज़ीरा था और मुसलमानों ने उसको हुकूमत को वसत दे देकर पूरे मुल्क में फैला दिया था, गरनाता और तुलैतला और बलंसिया और तमाम मुसलमानों की तहजीब के झंडे लहरा रहे थे, जहाँ बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और मुहद्दिसीन और उलमा और शायर, और बाद में यूरोप ने उनकी चीज़ों को लेकर अपने साइंस के मैदान में और तिब के मैदान में तरक्की की। वो सारा जो मुसलमानों का बनाया हुआ तहजीब का महल था, उसको तोड़ने में कोई देर नहीं लगी थी। मूसा इब्ने नुसैर के कायद जब तारिक इब्ने ज़ियाद ने 711 ईस्वी में अंदलुस को फतेह किया था, और फिर 1492 में तकरीबन 800 साल के बाद, ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन के अंदर आकर कुछ कर दिया गया था, बल्कि धीरे धीरे मुसलमानों से जंग छेड़ने की कोशिश की गई। मुसलमानों से जो सबसे पहली गलती वहाँ हुई थी वो यही थी कि उनकी हुकूमतें खित्तों में बट गई थी। तुलैतला में अलग हुकूमत थी, बलंसिया में अलग थी, फला जगह वहाँ तो फिर भी हुकूमत थी। आज तो हम हुकूमतों से बहुत दूर चले आए और उसके बाद कमज़ोर होते होते मुसलमानों के पास अब कोई फिक्र नहीं बची थी सिवाय बीच बीच में यूसुफ बिन ताशिकीन आए और कुछ लोग ऐसे बीच बीच में ताशिफीन और लोग आते गए जो एक अंधेरे में उम्मीद का चिराग बनकर आते थे, लेकिन मजमूई तौर पर मुसलमानों के अंदर की बेदारी ख़त्म होती चली जा रही थी। कैथोलिक चर्च मजबूत होता चला जा रहा था और उसका ये यकीन बढ़ता चला जा रहा था कि कमज़ोर मुसलमानों के कंधे पर हम वार कर सकते हैं, इनकी कमर तोड़ सकते हैं। और वो आजमाते थे, कहीं कोई कानून पास कर दिया, जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत होती चली जाती थी पाबंदियाँ लगाते चले जाते थे, और कुछ मुसलमान वो थे जो उन पाबंदियों को ठुकरा देते थे। ज़ाहरी तौर पर ईसाइत को कबूल कर लेते थे, दिल से ईमान पर कायम रहते थे, लेकिन वो जानते थे कि लोग ऐसा कर रहे हैं। उनको ऐसी ज़िल्लतों से गुजारा गया, उनको ऐसी सख्त सज़ाएँ दी गईं, लेकिन जो हुकूमत थी, जो मलिक सगीर जो आखिरी हुक्मरा कहलाता है, जिसकी हुकूमत सिर्फ गरनाता में रह गई थी छोटे से इलाके में, वो उस वक्त मुआहदात कर रहा था, उस वक्त वो उनके साथ बातचीत कर रहा था। जब उन्होंने 70 शर्तें लिख कर दीं कि हमें गरनाता तुम हवाले कर दो और हम तुम्हें अमन व अमान देंगे, तुम हमारी हुकूमत रहने दो, हम तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, औरतों की हिफाजत करेंगे, तुम्हारी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, तुम्हारे पढ़ने लिखने का और तुम्हारी सेहत का इंतज़ाम करेंगे। तो बादशाह भी इतना कमज़ोर हो चुका था उस वक्त कि उसने ये कहा कि आप कसम खाएं कि आप ये शर्त पूरी करेंगे। क्या बात, कि आप कसम खाएं कि आप ये शर्त पूरी करेंगे। और उनके पोप के पास भेजकर उससे वादा लिया गया कि जो इन्होंने वादे किए हैं वो करेंगे। जैसे आज ये लोग वादे करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप करेंगे ना, हाँ करेंगे, चले ठीक है वादे करेंगे। कुरान कहता है कैफ वइन यज़हरु अलैकुम ला यरकुबु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, अगर ये तुम पर गालिब आ गए किसी वादे का ये ख्याल नहीं करेंगे। ये वादा पूरा करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, ये वादा तोड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। उस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ था, मूसा इब्ने गस्सान ने खड़े होकर किले हमरा में खड़े होकर मुसलमानों को आवाज़ दी थी, तवील खुतबा दिया और मुसलमानों से ये कहा कि मुसलमान अपने दीन पर जमे रहो, मजबूती से कायम रहो, मुकाबला करो, सर मत झुकाओ, अपना दीन छोड़कर मुर्तद मत हो जाओ, दूसरे रास्ते मत अपना लो, दाएं बाएं रास्ता मत ढूंढो, इधर उधर गली कूचे में मत भागो, मैदान में खड़े रहो। और जो जिस मुल्क में जिस किस्म के कवानीन हों, जिस किस्म के कि हमें आज़ादी है कहने की, और जो कुछ रास्ते हैं उसके मुताबिक सोचने की ज़रूरत होती है। उस शख्स मूसा इब्ने गस्सान की चंद तकरीरों के नतीजे में उसने मलिक सगीर को भी भरोसा दिया, काफ़ी दिनों तक उसको लेकर चलते रहे, लेकिन जब वो हुकूमत और बादशाह इस कदर कमज़ोर हो गया कि किला हमरा से जब उसको निकाला गया और उस वक्त के जो फर्नांडो और एज़ेबिल्ला जब राजा और रानी वहाँ पर दाखिल हुए, तो उस वक्त मुसलमान बादशाह ने झुक कर घुटने टेक कर और उनके हाथों का बोसा लिया और उनको किले की चाबी हवाले की और कहा कि ये लीजिए आज से आप यहाँ रहें। और मुसलमान बादशाह के लिए किले के ऊपर एक टीले पर इंतज़ाम किया गया कि वहाँ से वो किले को देखता रहे और देख देख कर रोता रहे कि ये निशानी है हमारी गुजरी हुई हुकूमत की और हमारी किस्मत की जो बुलंदी थी उसको यहाँ पर जमा कर दिया गया है और इसको उसका मदफन बना दिया गया। उस वक्त मलिक सगीर की माँ ने कहा था कि आज तुम्हें रोना चाहिए। जब देखा कि वो रो रहे हैं बंद होकर, तो कहा कि तुम औरतों की तरह रो, ऐसे मुल्क पर रो कि जिसका तुमने मर्दों की तरह डिफेंस नहीं किया, जिसके लिए तुमने कोई काम नहीं किया, तो आज औरतों की तरह इस अंधेरे कमरे में बैठकर रो और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। फिर उसके बाद मूसा इब्ने गस्सान और लोगों ने कई इनकलाबात आए और तकरीबन 75-80 साल तक मुसलमान खींच कर ले गए अपने वजूद को अंदलुस में, और ये कोई हुकूमत नहीं थी, आम मुसलमान थे, उसमें दीनी हमीयत रखने वाले लोग थे। उन्होंने ऐसे लोगों को जो मुर्तद हो रहे थे और दीन छोड़ कर जा रहे थे, जिनको अरबी ज़बान बोलने से मना कर दिया गया था, जिनको अरबी लिबास पहनने से मना कर दिया गया था, जिनको अज़ान देने से मना कर दिया गया था, जिनको खतना करने से मना कर दिया गया था, शादी ईसाइयों के तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए और जितने काम है उसके मुताबिक होने चाहिए, जहाँ कहीं भी वो उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते थे, उनको दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अगर मूसा इब्ने गस्सान, अमीर मूसा इब्ने गस्सान, मूसा बिन अहमर अल गस्सान, कि जिनका नाम भुला दिया गया तारीख से, मूसा इब्ने नुसैर को तो लोग जानते हैं लेकिन इनका नाम भी नहीं आता, अगर वो उनके साथ कुछ लोग और खड़े हो जाते तो अंदलुस में मुसलमानों के कदम जम जाते। एक शख्स और चंद उसके हमनवा थे जिसकी वजह से वहाँ मुसलमानों के कदम एक अरसे तक जमे रहे, मुसलमानों की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद भी। वहाँ उन्होंने यही तरीक़ा अपनाया कि हमेशा हर बात का मानते चले जाना और आसानी से ये उनको एहसास दिलाते चले जाना, आप हमारे हुक्मरान हैं। कल एक मुसलमान कायद समझे जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़लाँ हमारे ज़ामिन हैं, फ़लाँ हमारे मसीहा हैं, वो हमारे लिए काम करें, वो हमारे लिए सोचें, हम किसके पास जाएंगे, किसको दुहाई देंगे। ये वो तरीक़ा होता है जो इंसान को हमेशा पीछे धकेलता चला जाता है, फिर वो किसी सफ में खड़ा होने के लायक नहीं रहता। इसलिए मेरा कद ये नहीं है, मेरा इल्म ये नहीं है, मेरी ये समझ ये नहीं है कि मैं इस तरह के मौजूआत पर बात कर सकूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक बहुत संजीदगी के साथ हमें सोचने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ शोबों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से लोग ये राय दे रहे हैं और शायद हो सकता है ये राय सही हो, लेकिन इस राय को भी मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है कि मुसलमान आइंदा अगर ऐसे हालात आते हैं तो वो इर्तिदाद की लहरों से मुसलमानों को बचाने के लिए और दीन का दामन कहीं उनके हाथों से छूट ना जाए, इसलिए हम सब फैसला करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेंगे और हम इसी तरह कायम रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बायकॉट करेंगे, लेकिन इसको बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि ये अगर मैसेज सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया गया, वायरल कर दिया गया और ये समझ लिया गया कि सारे लोग इस पर अमल करेंगे, कुछ लोग अमल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, किस तौर पे करेंगे, ये वो बातें नहीं है कि जिसको एक मैसेज से या किसी तकरीर से हल कर लिया जाए। ज़रूरत है कि बार बार हम लोग जमा हों, बैठें और उसके साथ साथ फिर गौर व खौज के बाद कोई एक मंसूबा तैयार करें। अब ये वक्त नहीं है कि फिर आइंदा सोचें कि फिर कोई नाजुक हालत आएगी तो फिर देखा जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम इस नियत से खड़े हों कि हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन के नाम लेवाओं की मदद करेंगे और इस मुल्क में जो आम फ़िज़ा है, से जो फ़िज़ा है यहाँ अमन व अमान की, और जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरी कौमों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसमें हम अपना फरीज़ा अदा करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझ दे और हमारी सही रहनुमाई फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को हर तरह के फितनों से महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना।